श्री परमात्म ने नमः। गीता का सार। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 32। भगवान सबके हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है गीता का सार बाय जगत का सार में, जहां हम हर दिन श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का सार, अर्थ और गूढ़ भाव आपके साथ साझा करते हैं। कृपया इस दिव्य ज्ञान को अधूरा न सुने, क्योंकि इससे गीता जी का अनादर हो सकता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं। हम या भगवान बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप पूरा सुनते हैं तो शायद जीवन की कोई गुत्थी सुलझ जाए। रीकैप कल का श्लोक, चैप्टर 9, श्लोक 30। कल हमने जाना कि अगर कोई अत्यंत पापी भी भगवान की सच्ची और एकनिष्ठ भक्ति करता है तो वह साधु कहलाने योग्य है। भगवान हमारे अतीत को नहीं, हमारे वर्तमान संकल्प और नियत को देखते हैं। टुडेज श्लोक, चैप्टर 9, श्लोक 32। मा ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योने, स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। भावार्थ, हे पार्थ, जो लोग पापियोनी कर्मवश निचले कुल में जन्मे, जैसे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी यदि मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो वे भी परमति को प्राप्त करते हैं। टुडेज लर्निंग बटा ज्ञान। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जन्म से कोई नीच या उच्च नहीं होता, भक्ति ही सबका आधार है। सबको अवसर है, चाहे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां रही हों, यदि मन में सच्ची भक्ति है तो मोक्ष की राह खुल जाती है। गीता है समता का पाठ। गीता जातपात वर्ग विभाजन से परे जाती है और एक सर्वसमावेशी जीवन का संदेश देती है। लेसन, आज से हम किसी को भी उनके जन्म, जाति या पेशे से नहीं आंकेंगे, हम उनके कर्म और भक्ति को देखेंगे। यही गीता का संदेश है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भैहरं सर्व लोकैक नाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम्। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
अपनी शरणागति से स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल आदि को भी परमति रूप फल की प्राप्ति। श्लोक 32। मा ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। उच्चारण की विधि माम, ही, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पाप्योनयः, स्त्रिय, वैश्या, तथा, शूद्रा, ते, अपि, यान्ति, पराम, गतिम्। 32 शब्दार्थ ही अर्थात क्योंकि, पार्थ अर्थात हे अर्जुन, स्त्रिया अर्थात स्त्री, वैश्या अर्थात वैश्य, शूद्रा अर्थात शूद्र, तथा अर्थात तथा, पाप्योनय अर्थात पाप्योनी चांडालादि, ये अर्थात जो, कोई, अपि अर्थात भी, स्युः अर्थात हों, ते अर्थात वे, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मेरी, व्यपाश्रित्य अर्थात शरण होकर, पराम अर्थात परम, गतिम अर्थात गति को, ही, यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। अर्थ, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनी चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। 32 व्याख्यामा ही पार्थ व्यपाश्रित्य यान्ति परां गतिम्। जिनके इस जन्म में आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पापयोनि कहा है। यहाँ पापयोनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। केवलन ही भावेन गोपियो गावो नगा मृगा यन्य मूर्धियो नागा सिद्धा मामयूरंजसा श्री मध्वा 011-12-8। गोपियां, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूणबुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, आनिंद्योन्यधिक्रियते पारंपर्यात सामान्यवत। शांडिल्य भक्ति सूत्र 78। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है, अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पापयोनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सबकी सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहां स्त्रिय पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हों, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम भक्ति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुमती, द्रौपदी, व्रजगोपियां आदि और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम भक्ति को प्राप्त होते हैं। विशेष बात, इस श्लोक में पापयोनि, पद स्वतंत्र रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं। उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पापयोनी कैसे कह सकते हैं? अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परमगति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। अगर इस पापयोन्य पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता, कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पापयोनि नहीं माना जा सकता। तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणिया योनिमापदेरन ब्राह्मण्योने व क्षत्रियोने व वैश्योने वाथ ये इह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूया योनिमापदेर्ष्वयोने व सुकर्योने व चांडाल्योने व छांदोग्य 05:10-07। अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते, सूकर तथा चांडालयोनि में जन्म लेते हैं। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इस पापयोन्य पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता, क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं। अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हून, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हीं को पापयोन्य पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे मां की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वे बच्चे मां के ही हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। अतः यहां पापयोन्य पद में पशु, पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। मार्मिक बात, भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती, कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता। अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्मा ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापैति बृहदारण्यक 04:04-06। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहां स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहां मैं शरीर से अलग हूं, यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़ मांस का, मलमूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास, गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं। यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है, तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है, तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती। वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। परिशिष्ट भाव, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहां व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले 30वें 31वें श्लोकों में वर्तमान इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। ये पी स्युह पापियों ने संबंध भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं।
कल हम जानेंगे कि यदि स्त्रियां वैश्य और शूद्र मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वे जो पुण्य कार्यों में लगे हैं, ब्राह्मण और राजर्षि, उनके लिए कितना सरल है प्रभु प्राप्ति का मार्ग। टुडेज लर्निंग, आज की सीख। सच्ची भक्ति से जीवन में शीघ्र परिवर्तन संभव है। भगवान कभी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं। धार्मिक बनना तुरंत संभव नहीं, लेकिन शुरुआत से होता है बदलाव। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो तुम्हें संभाल लेंगे। दूसरों के बदलते जीवन को देखकर उन्हें जज ना करें, प्रेरणा लें। टुडेज क्वेश्चन फॉर ऑडियंस एंगेजमेंट। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान किन किन को भी परमति प्राप्त करने का अवसर देते हैं? अस केवल ब्राह्मण, बी केवल सन्यासी, सी स्त्रिया वैश्य शूद्र आदि भी, डी केवल अर्जुन। सही उत्तर कमेंट में दीजिए और कल के वीडियो में आपका नाम शामिल हो सकता है। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।